मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 13 नवंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं सचिन कुमार, आप सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, अंजलि मैथिल, आप जलालाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, दिव्या, आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, शैलेश कुमार, आपका गांव है फरीदा, जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, संजीव कुमार, आपका गांव है बरही बीघा, जिला गया बिहार से हैं, रोशनी देवी, आपका गांव है शुकुलडी, जिला अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं, और अमर बी बांदा, आप जालना महाराष्ट्र से हैं। तो सचिन, अंजलि, दिव्या, शैलेश, संजीव, रोशनी और अमर, आप सभी 7 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत और बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक सूचना है और यह सूचना है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें मैं न्यू बैच कहना चाहूंगा जो हमारा नवा बैच रहा है और कुछ ही दिनों पहले जिनके 15 दिन की क्लासेस कंप्लीट हुई हैं उनके लिए एक छोटी सी सूचना। कल जब मैं मेल देख रहा था तो मुझे एक बात अनुभव करके इनफैक्ट बहुत खुशी हुई कि बहुत से स्टूडेंट ने इस बात को लेकर के मेल लिखे थे, मतलब जानकारी चाहिए थी कि उन्हें जो क्लास प्रेजेंटेशन के नोट्स होते हैं वो कब तक मिलेंगे, जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस सर आपने भेजने को कहा था वो कब तक मिलेंगे और कोशिश कीजिए सर कि वो हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। इनफैक्ट सच पूछे तो उसमें केवल याद दिलाने की ही भावना नहीं दिख रही थी, पाने की ही चाहत नहीं दिख रही थी, बल्कि सच पूछिए तो पाकर उनका उपयोग करने की एक छटपटाहट महसूस हो रही थी। उस छटपटाहट को मैं आप लोगों के उन मेल में महसूस कर सकता था कि वो किस तरीके से आपके दिल और दिमाग उसमें धड़क रहे हैं, यानी कि जल्दी से जल्दी आपको ये चीजें अवेलेबल हो जाए। मित्रों, जब आप सबके अंदर इतनी जबरदस्त जिज्ञासा होती है तो मान करके चले कि सामने वाले में उतनी ही वह अधिक ऊर्जा का संचार कर देता है, और ऐसा ही हुआ। तो आप सबके लिए एक अच्छी सूचना यह है फ्रेंड्स कि जो क्लास प्रेजेंटेशन के जो नोट्स थे और स्पेशल ऑडियो गाइडेंस, एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस आप सभी के मेल पर भेजा जा चुका है। आप सब अपने अपने मेल को एक्सेस कर लें, उसमें ये चीजें अवेलेबल आपको मिलेंगी। मैं एक तथ्य आपको और बता दूं कि जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है वो सप्ताह में केवल एक दिन भेजा जाता है, वंस इन ए वीक। इस तरीके से 50 सप्ताह तक लगातार आपको 50 स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजे जाएंगे और आपके ढेर सारे वे टॉपिक्स उसमें कवर होंगे जिन्हें हम किसी वजह से क्लास में नहीं कर पाते, और स्वाभाविक है कि क्लास में तो आप कितना कर पाएंगे। तो क्लास का जो अधूरापन है उसे ये स्पेशल ऑडियो गाइडेंस पूरा करेंगे। अगर आप उसे अधूरापन कहें तो इनफैक्ट वो अधूरापन नहीं है, क्योंकि क्लासेस में ये समझाने की कोशिश की जाती है, सिखाने की कोशिश की जाती है, बताने की कोशिश की जाती है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। तो मित्रों, ये स्पेशल ऑडियो गाइडेंस आपको लगभग लगभग एक साल तक मिलते रहेंगे, जिसकी शुरुआत हो गई है। राइट फ्रेंड्स, आइए अब हम अपने रोजाना के सिस्टम पर आते हैं और आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद पर कुछ बातें करेंगे, लेकिन पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लें। जहां तक न्यूज का सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज का सवाल है फ्रेंड्स, ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है जिसको हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट से यहां शामिल कर सकें। हां, अखबारों के माध्यम से मैं जरूर कुछ न्यूज की चर्चा आपसे करना चाहूंगा, और जिनकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं उनकी खासियत यह है, चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, कि इन्हें आप रेफरेंस के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। यानी कि साल दो साल तक जब आपकी मुख्य परीक्षाएं होंगी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप रिटन एग्जामिनेशन में बैठते हैं या यहां तक कि ऐसे राइटिंग करते हैं, तो बकायदे कुछ ऐसे रेफरेंसेज हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें जो पहला है वो ये कि आपको मालूम है कि जो हमारे रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे हैं रघुराम राजन, उन्होंने अभी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में गए थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वर्तमान परिदृश्य है उसके बारे में कुछ बातें कही, राइट। उसमें उन्हें दो तीन महत्वपूर्ण बातें कही हैं, रेफरेंस के लिए मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और खासकर हमारे जो क्लास स्टूडेंट रहे हैं अभी और इससे पहले भी, उनसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इसे अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करें, और विश्वास कीजिए कि आप एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स पर हम लोगों ने काफी विस्तार से और बहुत बेसिक तरीके से बातें की थी। पहली बात उन्होंने ये कही कि जो भारत की जो मुख्य चिंता है वो उसकी विकास दर है, नंबर वन, यानी कि अभी जो 7% की विकास दर है उसे वो पर्याप्त नहीं मान रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस बात की तारीफ की है कि लगभग पिछले काफी सालों से, 25 साल से भारत इस 7% विकास दर पर चल रहा है, जो एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि उसने एक ठोस स्थिति तो करीब करीब हासिल कर ली है। लेकिन मुश्किल ये है कि 7% के विकास दर से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि जितने लोग रोजगार पाने की लाइन में बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से यह दर पर्याप्त नहीं है। और इसी में उन्होंने जोड़ा कि जो दूसरा कंसर्न है हमारी अर्थव्यवस्था का, वो है कि बैंकों का जो कर्ज डूब रहा है उसे वापस नहीं मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो बात कही है फ्रेंड्स, वो ये है कि भारत को चाहिए कि वो कृषि से जुड़ी हुई जो दूसरी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे पशुपालन है, बागवानी है, और जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, इन पर उसे अधिक जोर देना चाहिए, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने की ताकत होती है। तो फ्रेंड्स, ये रेफरेंस था। जो दूसरी बात है जो मुझे काफी महत्वपूर्ण लग रही है, वह है आरबीआई को अभी जो सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग, उसने निर्देश दिए हैं। आपको मालूम है कि बैंकों का कर्ज डूब दिया गया, कर्ज बैंकों द्वारा दिया गया कर्ज डूब रहा है, और एक आरटीआई डाली गई थी जिसमें बैंकों से कहा गया था कि वो जो जिन्होंने कर्ज लिया है और जो नहीं दे रहे, जिन्हें हम डिफॉल्टर कहते हैं, उनके नामों की घोषणा की जाए। बैंकों के साथ दिक्कत यह है कि जब वो कर्ज लेने वालों से कॉन्टेक्ट करते हैं तो उसमें एक क्लॉज होता है कि वो उनके नाम को डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो बैंक को करने की स्थिति में नहीं है। फिर यह मामला केंद्रीय सूचना आयोग के पास गया और केंद्रीय सूचना आयोग ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, आपको डिफॉल्टर्स के नाम डिक्लेयर करने चाहिए। अब देखिए कि स्थिति क्या होती है। इसी को लेकर के इकोनॉमिक टाइम्स ने आज एक एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है जो मैं आप सबको प्रोवाइड भी कर रहा हूं। आरटीआई के तहत जो सूचना, उन्हें सुनते हुए जो निर्देश दिए गए हैं केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा, उसने साफ कहा है कि बैंक जो लोन देती है वो बेसिकली पब्लिक फंड से देती है, वो पब्लिक फंड है, और पब्लिक फंड अगर वापस नहीं मिल रहा है बैंकों को तो इसका सीधा प्रभाव देश के लोगों पर पड़ेगा। दूसरी बात कि जो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इनके जो शेयर्स हैं वो बाजार में लिस्टेड हैं, तो जो शेयर खरीदने वाली जो पब्लिक है उसे मालूम होना चाहिए कि वो जिन जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं वो कौन है, उन किन कंपनीज के मालिक है, ताकि वो अपने शेयर्स के बारे में सही डिसीजन ले सकें कि भैया वो अभी शेयर को खरीदे नहीं खरीदे, इस कंपनी की हालत क्या हो रही है उसके बारे में वो निर्णय ले सके। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसी एडिटोरियल कमेंट में दिया गया है कि बकायदे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका किसी बैंक के साथ इस तरह के विश्वास बनाए रखने का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है जिसका सहारा अभी बैंक ले रहे हैं। बेसिकली जो आरबीआई है उसका जो मूल उद्देश्य है वो पब्लिक के हितों की रक्षा करना है और देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर ध्यान देना है। तो ऐसी स्थिति में बैंक को चाहिए कि वह पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे और किसी तरह के इंफॉर्मेशन को छुपाए नहीं, यानी कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने भी यह आदेश ही कह लीजिए, निर्णय दिया हुआ है कि नहीं, आरबीआई को डिक्लेयर डिफॉल्टर्स के नाम का करना चाहिए। और इसके बाद बकायदे इसी में दिया हुआ है कि एक एक्ट है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट, लंबा नाम है, आप लोग इसको याद रखना चाहेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। वो बकायदे कहता है कि जो डिफॉल्टर हुए हैं उनका नाम और उनके जो चित्र हैं वो पब्लिश किए जाने चाहिए, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। फिर सेकेंड पॉइंट ये है कि जब ये बैंक, जब इनको डिफॉल्टर घोषित किया, बैंकरप्सी दिवालिया घोषित कर देगी, तो फिर इस मामले को वो बकायदे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ले जाएगी, उसके खिलाफ मामला चलेगा। जब मामला चलेगा तो बट नेचुरली कि वो पब्लिक के लिए तो जानकारी इसकी हो ही जाएगी, पब्लिक के लिए वो घटनाएं नोन हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में भी नाम डिक्लेयर किया जाना चाहिए। मित्रों ये न्यूज है, ये आप लोग देख लीजिएगा और मुझे लगता है कि इसके इसमें भी आपको कई रेफरेंसेस मिले होंगे। एक छोटा सा बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल कमेंट है मित्रों, उसमें एक छोटी सी न्यूज है, कह लीजिए कि एल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के एक प्रोफेसर थे, बहुत ही फेमस प्रोफेसर जो भारत के थे मूलतः, TN श्रीनिवासन, उनका चेन्नई में अभी पिछले सप्ताह निधन हो गया है। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है जिसका टाइटल है तकनीक के चयन की समस्या। 1961 में ये प्रकाशित किया था, तकनीक के चयन की समस्या, ये रेफरेंस है। और उन्होंने अपने इस काम में इस बात पर प्रकाश डाला था कि जो विकासशील देश हैं जिसमें भारत भी है, इन्हें अपने लिए कौन सी तकनीकी का चयन करना चाहिए, उनके लिए कौन सी तकनीकी श्रेष्ठ होगी। तो दोस्तों इन तीन न्यूज के बाद आइए अब मैं चर्चा करता हूं आज के मुख्य विषय की। और इस मुख्य विषय का जो संदर्भ है वो ये कि आपको मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के 100 साल पूरे हो गए हैं और इसको लेकर के दुनिया भर में कार्यक्रम हो रहे हैं और इस पर एक तरीके से चर्चा भी हो रही है। खासकर इसकी जो 100वीं वर्षगांठ जो मनाई जा रही थी उसमें जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये एक मुद्दा उठाया और ये कह लीजिए कि विश्व को चेतावनी ही दी कि अगर आप बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद को उभारेंगे तो इससे राष्ट्रभक्ति को धक्का पहुंचेगा। देखिए राष्ट्रभक्ति का मतलब है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से रहना। राष्ट्रवाद और यह राष्ट्रभक्ति में जो फर्क है कि नेशनलिज्म जिसे हम कहते हैं कि मतलब अपने राष्ट्र के सामने आप किसी दूसरे राष्ट्र को कुछ समझें ही ना। और फिर ये जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म कहीं ना कहीं एक बहुत ही संकीर्ण रूप भी ले लेती है। वो राष्ट्र धर्म में परिवर्तित हो सकता है, वह राष्ट्र जाति में परिवर्तित हो सकता है। तो इस तरीके से जो नेशनलिज्म है वो नैरोनेस में कन्वर्ट हो जाता है और उससे फिर पैट्रियटिज्म को धक्का पहुंचता है। ये उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और जब उन्होंने ये बात कही तो वहां पर बकायदे जो वर्ल्ड लीडर जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है वो मौजूद थे, रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो मौजूद थे और साथ ही इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू वो भी मौजूद थे। इन तीनों के नाम इसलिए लिए जाना जरूरी है क्योंकि ये तीनों राष्ट्रवाद आज नेशनलिज्म की बात करने वाले सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में माने जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस अवसर पर जो ट्वीट किया है उसमें कहीं ना कहीं इसी तरह की बातें उन्होंने भी कही है कि आज चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वह ग्लोबल ट्रेड हो, विश्व व्यापार हो और यहां तक कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही क्यों न हो, आज इन सब की यह जरूरत हो गई है कि हम राष्ट्रवाद को छोड़ करके इंटरनेशनलिज्म को अपनाएं, यानी कि अंतरराष्ट्रवाद, अंतरराष्ट्रीयता राष्ट्रवाद कह लीजिए उसको अपनाएं। 100 साल पहले ही जब दुनिया आइसोलेशन में रहने की स्थिति में नहीं थी कि वो अलग थलग रह सके, तो आज तो कोई कारण है ही नहीं कि दुनिया का कोई भी देश यह सोच भी सके कि वह अपने आप में संपूर्ण है और अलग थलग रहकर वह अपना गुजारा कर लेगा। तो आप देखें कि पूरी दुनिया में धीरे धीरे, कहां तो हम 1991 में उदारीकरण के बाद ग्लोबल विलेज की बात कर रहे थे और अब कहां धीरे धीरे राष्ट्रवाद इतनी तेजी से उभरने लगा है कि हर देश अब केवल अपनी बातें करने लगा है। और खासकर इसकी शुरुआत ब्रेग्जिट से हुई है। ब्रेग्जिट आप जानते हैं कि जब ब्रिटेन में जनमत संग्रह करा करके और यह फैसला लिया गया कि वह अब EU यूरोपियन यूनियन से अलग होगा, तो यूरोपियन यूनियन से अलग होगा यह अपने आप में एक समूह के टूटने की शुरुआत थी और बाद में फिर ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इसी कथ्य को बहुत आगे बढ़ाया यह नारा देकर कि अमेरिका अमरीकियों के लिए। सच पूछिए तो ये जो बात कही जा रही है फर्स्ट वर्ल्ड वार के 100th ईयर्स पर, वो उन्हीं घटनाओं के प्रति चेतावनी देने के लिए कही जा रही है। कहीं ऐसा न हो कि पूरी दुनिया जो अब एक इकट्ठी होकर के समस्याओं के बारे में सोचने लगी है, अपने अपने ही बारे में सोचने में इतना मग्न हो जाए कि तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बनने लगे। तो फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सभी देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से 5 मित्रों के नाम हैं, अमरजीत कौर पंजाब से, चंद्रशेखर कुमार, सौरभ यादव कानपुर उत्तर प्रदेश से, पुष्पेंद्र जयपुर से और उमेश कुमार सैनी। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।